पृष्ठ संख्या 21 द्वितीय अध्याय ग्रीक दर्शन प्लेटो। प्लेटो 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व। प्लेटो ग्रीस के सबसे महान और विश्व के एक महान दार्शनिक हैं। उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। उनकी प्रशंसा करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। वे महान साहित्यकार कलाकार भी थे। पाश्चात्य दर्शन का एक भी ऐसा मौलिक सिद्धांत नहीं जो प्लेटो में न मिलता हो। प्लेटो का जन्म उच्च कुलीन सामंत परिवार में हुआ था। सॉक्रेटिस के वे पट शिष्य थे। सॉक्रेटिस के मृत्यु से ग्रीक प्रजातंत्र के प्रति उनको घृणा हो गई। वे इटली और सिसिली भी गए थे। वहाँ से लौटकर एथेंस में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध संस्था एकेडमी की स्थापना की और उसके प्रधान आचार्य बनकर शांति से दर्शन के चिंतन और अध्यापन कार्य में लगे रहे। सिसिली में उनको वहाँ के युवक राजा डायोनेसियस को पढ़ाने के लिए राजा के संरक्षक डायोन ने निमंत्रित किया। प्लेटो वहाँ गए, किंतु 4 महीनों के भीतर ही डायोन और राजा में झगड़ा हो गया। डायोन को निर्वासित कर दिया गया और प्लेटो को एथेंस लौट आना पड़ा। प्लेटो दोबारा सिसिली गए और डायोन तथा राजा में समझौता कराने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। लगभग 1 वर्ष सिसिली में रहकर वे एथेंस लौट आए और शेष जीवन उन्होंने एकेडमी में ही शांतिपूर्वक व्यतीत किया। एकेडमी का जीवन आश्रम जीवन के समान था। प्लेटो का गुरु शिष्य के साक्षात संपर्क में अटल विश्वास था। एकेडमी के सदस्य एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ पढ़ते थे और एक साथ प्रार्थना करते थे। उनका जीवन धार्मिक और दार्शनिक था। प्लेटो ने अपनी महान कृतियाँ संवादों अर्थात डायलॉग्स के रूप में लिखी हैं। दार्शनिक महत्व के साथ साथ उनका साहित्यिक महत्व भी विशेष है। प्लेटो ने 50 वर्षों में अनेक संवादों की रचना की है। प्लेटो के रचनाकाल को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 22 प्रथम काल एकेडमी के स्थापना के पूर्व का काल है, जिसमें एपोलॉजी, क्राइटो, प्रोटेगोरस, जॉर्जियस, मेनो, फीडो और सिंपोजियम नामक संवादों की रचना है। द्वितीय काल एकेडमी की स्थापना के तुरंत बाद का काल है, जिसमें रिपब्लिक और फ्रिट्स नामक संवादों की रचना हुई। तृतीय काल प्लेटो के वार्धक्य का काल है, जिसमें पार्मेनाइडीज, थोटिचस, सोफिस्ट, फिलेबस, टाइमियस और लॉज नामक संवादों की रचना हुई। इनके अतिरिक्त प्लेटो ने अपनी असली सिद्धांत अपने शिष्यों को उपदेश रूप में दिए, जिनका उन्होंने प्रकाशन नहीं किया। प्लेटो में ग्रीक दर्शन अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा है और इसलिए उनको पूर्ण ग्रीक अर्थात द कंप्लीट ग्रीक की उपाधि दी गई। माइलेशियन मत का द्रव्य विशेषतः एनेक्जिमेंडर का असीम, पाइथागोरस का स्वरूप या संख्या और उनका रहस्यवाद, हेराक्लाइट्स का परिणाम और सार्वभौम विज्ञान, पार्मेनाइडीज का चिद्रूप सत्य, जीनों का द्वंद्वात्मक तर्क, एम्पेडोक्लीज का प्रेम, एनेक्जेगोरस का परम विज्ञान, परमाणुवादियों का भौतिक विज्ञान, प्रोटेगोरस का मानव मानदंड एवं सॉक्रेटिस का विज्ञानवाद, विज्ञान स्वरूप शिव तत्व और द्वंद्वात्मक तर्क एवं निर्विकल्प स्वानुभूति, इन सब का चरम विकास प्लेटो के दर्शन में हुआ है। प्लेटो ने इन सिद्धांतों का संग्रह मात्र नहीं किया, वे महान दार्शनिक और कलाकार थे। उन्होंने अपने दर्शन में अपनी मौलिक रीति से इन सब का समन्वय किया है। प्लेटो ने पाइथागोरस से गणित प्रेम, रहस्यवाद, धार्मिकता, आत्मा की अमरता का सिद्धांत, परलोक में विश्वास और स्वरूप या संख्या का सिद्धांत ग्रहण किया। हेराक्लाइट से उन्होंने यह शिक्षा ली कि दृश्य जगत में परिणाम और अनित्यत्व का अखंड साम्राज्य है। पार्मेनाइडीज से उन्होंने सत्य के चिद्रूप, अद्वितीय, निरपेक्ष, नित्य, अपरिणामी, दिक्कालातीत और परमार्थ होने का सिद्धांत ग्रहण किया। एनेक्जेगोरस से उन्होंने परम विज्ञान के जगत की गति और परिणाम का एकमात्र कारण होने का सिद्धांत लिया। परमाणुवादियों से उन्होंने अपने भौतिक विज्ञान के कुछ सिद्धांतों में सहायता ली। अपने गुरु सॉक्रेटिस से उन्होंने सब कुछ लिया और इन सब विचारों का समन्वय उन्होंने अपने मौलिक विचारों के साथ किया। पृष्ठ संख्या 23। अपने पूर्ववर्ती सारे ग्रीक दार्शनिकों का प्रभाव प्लेटो पर और प्लेटो का प्रभाव अपने परवर्ती सारे पाश्चात्य दार्शनिकों पर पड़ा। यह ध्यान देने योग्य है कि प्लेटो प्रधान रूप से रहस्यवादी हैं। उनके लिए दर्शन जीवन का अंग है। दर्शन का लक्ष्य तत्व का निर्विकल्प साक्षात्कार है। आत्मा को इंद्रिय अनुभूत से ऊपर उठाकर तर्क के स्वविकल्प स्तर पर होते हुए निर्विकल्प स्वानुभूत तक ले जाना दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। दर्शन का लक्ष्य असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर जाना है। यह साधना द्वारा हो सकता है। तर्क तत्व की ओर संकेत मात्र करता है। तत्व का साक्षात्कार साधना का विषय है। इसलिए प्लेटो ने गुरु और शिष्य के साक्षात संपर्क को इतना महत्व दिया। दार्शनिक का लक्ष्य शांतिमय साधना द्वारा निर्विकल्प अनुभूत प्राप्त करना है, किंतु दार्शनिक का कार्य लोक संग्रह या लोक कल्याण करना भी है। असली लोक कल्याण तो सिद्ध की स्थिति मात्र से ही होता है। फिर भी आवश्यकता होने पर सिद्ध निर्लिप्त भाव से सांसारिक क्षेत्र में भी उतरते हैं। जब तक ऐसे सिद्ध दार्शनिकों का प्राधान्य न होगा, विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। एकेडमी में अध्ययन का कार्यक्रम इस प्रकार था। पहले गणित, रेखा गणित, ज्योतिष आदि का अध्ययन था, फिर द्वंद्वात्मक तर्क का और अंत में साधना की प्रणाली का। परम तत्व विशुद्ध विज्ञान स्वरूप शिव तत्व है, जो केवल स्वानुभूति से का विषय है। सविकल्प तर्क द्वंद्वात्मक और निषेध प्रधान है। तर्क का कार्य अपने विकल्पों का खंडन करके निषेध रूप से यह सिद्ध करना है कि उसकी गति तत्व तक नहीं, यह तत्व की ओर संकेत मात्र करके निर्विकल्प अनुभव की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। द्वंद्वात्मक तर्क रूपी दर्शन विज्ञानों का विज्ञान अर्थात साइंस और साइंसेज है, क्योंकि जहां अन्य विज्ञान समाप्त होते हैं वहां से इसका प्रारंभ होता है। जब इस दर्शन का तर्क रूपी निषेध रूप समाप्त होता है तब निर्विकल्प अनुभव रूपी विधान रूप प्रारंभ होता है। यह शिव तत्व की साधना है जो दर्शन का चरम लक्ष्य है। प्लेटो का सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत उनका विज्ञानवाद अर्थात थ्योरी ऑफ आइडियाज है। कुछ विद्वानों के मत में यह सिद्धांत प्लेटो का ही है, सॉक्रेटिस का नहीं, क्योंकि हम प्लेटो के सॉक्रेटिस को जानते हैं, ऐतिहासिक सॉक्रेटिस को नहीं। अन्य विद्वानों का मत है कि यह सिद्धांत सॉक्रेटिस का ही है और प्लेटो ने बाद के संवादों में इसका खंडन कर दिया है। पृष्ठ संख्या 24। किंतु सत्य बात यह है कि यह सिद्धांत अपने मूल रूप में सॉक्रेटिस का है, यद्यपि स्वयं सॉक्रेटिस पर पाइथागोरस, हेरेक्लाइट्स और पार्मेनाइडीज आदि का प्रभाव पड़ा है और प्लेटो ने इसका विकास करके इसे विशद रूप दिया है। यह विज्ञानवाद प्लेटो के फीडो आदि उन संवादों में मिलता है जिसमें सॉक्रेटिस की प्रधानता है। प्लेटो सॉक्रेटिस के मुंह से ऐसी कोई बात नहीं कहला सकते थे जो स्वयं सॉक्रेटिस को मान्य न रही हो, क्योंकि ये संवाद उन लोगों के पढ़ने के लिए थे जो सॉक्रेटिस और प्लेटो दोनों को जानते थे। सॉक्रेटिस ने स्वयं कुछ नहीं लिखा, प्लेटो ने ही अपने संवादों में उनके दर्शन को रूप दिया। प्लेटो की उत्कृष्ट साहित्यिक कला के कारण सॉक्रेटिस के और उनके विचार घुल मिल गए हैं। फिर भी यह निस्संदेह सत्य है कि अपने मूल रूप में यह विज्ञानवाद सॉक्रेटिस के हैं और इसे अभिव्यक्त करने का श्रेय प्लेटो को है। प्लेटो को भी यह सिद्धांत मान्य है और उन्होंने इसे विशद एवं विकसित किया है। प्लेटो के पार्मेनाइडीज नामक संवाद में इस विज्ञानवाद का खंडन किया गया है। जो लोग विज्ञानवाद को सॉक्रेटिस का मानते हैं उनका मत है कि प्लेटो ने पार्मेनाइडीज में इसका खंडन कर दिया है। जो लोग इसे प्लेटो का मानते हैं उनका मत है कि प्लेटो ने आगे चलकर अपने विचार बदल दिए, किंतु दोनों ही मत ठीक नहीं है। वस्तुतः पार्मेनाइडीज में विज्ञानवाद का खंडन नहीं किया गया है, किंतु उसका संशोधन किया गया है। प्लेटो ने अपने फीडो आदि पूर्व संवादों में सॉक्रेटिस के विज्ञानवाद का वर्णन किया है और पार्मेनाइडीज में उन्होंने अपने विचारों के अनुरूप उसका संशोधन कर दिया है। सॉक्रेटिस के अनुसार इंद्रिय जगत विज्ञान जगत में भाग लेता है और उसको प्रतिबिंबित करता है। प्लेटो के अनुसार भाग लेने की ध्वनि यह निकल सकती है कि इंद्रिय जगत वस्तुतः विज्ञान जगत का सत्य अंश है। ऐसा मानने पर व्यवहार और परमार्थ का भेद ही नहीं रहता और व्यवहार केवल अपूर्ण परमार्थ बन जाता है। यह प्लेटो को मान्य नहीं है और प्रतिबिंब मानने पर यह ध्वनि निकल सकती है कि व्यवहार में कोई तत्व नहीं, तब व्यवहार असत बन जाता है और यह भी प्लेटो को मान्य नहीं। अतः प्लेटो इंद्रिय जगत को विज्ञान जगत का अंश या प्रतिबिंब कहने की अपेक्षा उसे विज्ञान जगत की अभिव्यक्ति अर्थात एक्सप्रेशन कहना अधिक अच्छा समझते हैं। यह प्लेटो का सॉक्रेटिस के मत में प्रथम संशोधन है। द्वितीय सॉक्रेटिस ने विज्ञान रूप शिव तत्व की ओर संकेत मात्र किया है। प्लेटो विज्ञानों को इस शिव तत्व के सूत्र में पिरोकर उसको और अधिक स्पष्ट कर देना चाहते हैं। यह सत्य है कि प्लेटो भी सॉक्रेटिस के समान शिव तत्व को अनिर्वचनीय और स्वानुअनुभूति गम्य मानते हैं। पृष्ठ संख्या 25 और इसके विषय में अधिक नहीं कहते हैं, किंतु इस शिव तत्व की अनिर्वचनीयता और प्राधान्य का तो उन्होंने स्पष्ट विवेचन कर दिया है। तृतीय, सॉक्रेटिस ने विज्ञानों के बहुत का इस शिव तत्व में स्पष्टतया विलय नहीं किया। प्लेटो ने स्पष्ट रूप से विज्ञानों को भी इस शिव तत्व की अभिव्यक्ति मात्र माना है। ये तीन महत्वपूर्ण संशोधन प्लेटो ने सॉक्रेटिस के विज्ञानवाद में किए हैं।